सिखलाता है राज
Good morning and Om Shanti. Everybody is very refreshed and full, isn't it? Breakfast ke baad hamara tan tandrust hai aur lekin ab hame man ko bhi tandrust karna hai aur aaj ka jo subah session hua tha jisme aaj humne jana the most important thing ki who am I and that is the basis of everything in life and now हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और उसके बाद जो अगली चीज हम जानते हैं कि आत्मा के गुण क्या होते हैं. आत्मा इस शरीर में आती है, दूसरी आत्माओं से इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं एंड रिलेशनशिप्स इस हमारे जीवन का आधार है. और आज का जो हमारा पैनल डिस्कशन है रिलेशनशिप के ऊपर ही है और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप को हम टच करेंगे, दैट इज डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप. एंड टू डिस्कस द सेम वी हैव वेरी डायनामिक एंथुजियास्टिक पैनलिस्ट विद अस. प्लीज गिव देम अ बिग हैंड, डॉक्टर उषा किरण, डॉक्टर ब्रजेश सिंगल एंड डॉक्टर किरण बाला. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी बहनों से कि हमारे पैनलिस्ट को फेलिसिटेट करें फूलों के द्वारा. और मेरे लेफ्ट में हैं डॉक्टर उषा किरण, मैं इनका परिचय देना चाहूंगी. आप दिल्ली से हैं और आप एम्स में, द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एम्स न्यू दिल्ली में आप कार्डियक एनेस्थीसिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं. डॉक्टर ब्रजेश सिंगल ब्रदर, ही इज फ्रॉम ग्वालियर एंड ही इज अ यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन ग्वालियर एंड ही इज हेडिंग अ 50-bedded hospital called as Navjeevan Hospital in Gwalior. Dr. Kiran Bala on the right side, she is also from Delhi and she is a neurologist. She is head of the department at the prestigious institute PGI Rohtak. Thank you, sister. Okay, sister is saying I should introduce myself also. I am Dr. Reena Tomar. I am from Delhi and I am assistant professor in pathology in Maulana Azad Medical College, Delhi. Thank you. डॉक्टर उषा किरण जो कि कार्डियक एनेस्थीसिया के हेड हैं एम्स में और पिछले 30 वर्षों से आप राजयोग मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं. दैट इज अ बिग थिंग. मोर देन 30 इयर्स एंड यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस नॉलेज इन योर स्टूडेंट लाइफ एंड यू टुक ऑल द एफर्ट्स टू स्टार्ट डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया इन एम्स. You have many scientific papers, more than 180 publications, presented lots of papers in national and international conferences, and did a lot of research in meditation in medicine, and that you will be telling in our panel discussion. And you were also awarded with the Rashtriya Gaurav Award in 2007. Dr. Brajesh Singhal, as I told you, a urologist from Gwalior, and heading the Navjeevan Hospital in Gwalior, and also a regular practitioner of Rajyoga meditation for the last 7 years. And in this span, he has done a lot of service. He has conducted many conferences and big programs in Gwalior. I had been there, and a big program called Future of Power, which was recently organized, and a very good service in a godly student. And Dr. Kiran Bala, you're a urologist, head of the department at PGI Rohtak, and you were head of the department at IBHAS in New Delhi, and also a regular practitioner of this knowledge for the last 25 years. You have many publications, presented many papers in various conferences. And your family, I should tell you one important thing, her daughter, we call her Ashima Behen, she is an engineer, she has done MBA, and she has voluntarily dedicated her life in this knowledge. She is also living in Delhi. Her son is also an engineer. Her husband is a dentist, head of the department. All four of them are practitioners of Rajyoga meditation, the whole family. So coming back to our topic, doctor-patient relationship. Ye jo rishta hai, ye bahut hi important rishta hai. Rishta, relationships, jaise ki humne kaha, hamare jeevan ka aadhar hota hai. अब हम अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ चलते हैं तो डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता हमारे प्रोफेशनल करियर का आधार है. अगर मैं एक पिक्चर आपके सामने क्रिएट करूं कि ये रिश्ता सारी जो हमारी सोसाइटी की लिमिटेशंस हैं उसके बियॉन्ड है. इट इज बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड एज, बियॉन्ड जेंडर, एंड आई शुड से बियॉन्ड मनी ऑल्सो. दिस इज अ रिलेशनशिप इन विच अ डॉक्टर गेट्स लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. Lots of blessings. हमें blessings मिलती है और patient को सुकून और satisfaction मिलता है. अब ये मैं कहूंगी कि शायद मैंने ideal picture आपके सामने create की है. ऐसा था पहले, ऐसा है भी, लेकिन जैसे जैसे हम observe करते हैं इसमें थोड़े से कुछ हमारे disheartening emotions, feelings और experiences आते जा रहे हैं. ऐसी बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं, जो कि हमें अच्छी नहीं लगती. इस रिश्ते में क्या गड़बड़ आई, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. वी विल अनफोल्ड दिस रिलेशनशिप विद अ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच. टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ऐसा क्या हुआ इस रिश्ते के अंदर कि जो कि इतना खराब हुआ. डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहते थे और अब वो वाला रिस्पेक्ट बहुत बहुत कम हो गया है. सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी कि जिसको हम कहते हैं कि ट्रस्ट. जो मरीज है वो डॉक्टर के ऊपर ब्लाइंड फेथ करता है या करता था, जो कि आज नहीं है. एंड डॉक्टर जो कि पेशेंट के कॉन्फिडेंस में होते थे, पेशेंट्स ने अपना ट्रस्ट खोया और हमने हमारा जो पेशेंट में कॉन्फिडेंस था हमने वो लूज किया. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर उषा किरण इज दैट व्हाट हैपेंड टू दिस ट्रस्ट, व्हाई इट इज लॉस्ट, एंड नाउ एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ डे टू डे, व्हाट वी कैन डू टू रीगेन एंड रीबिल्ड दिस ट्रस्ट.
थैंक यू सिस्टर रीना. आप जब टॉपिक कर रहे थे रिलेशनशिप का तो सडनली मुझे एक पिक्चर याद आया कि जगह जगह आजकल एड होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स के, एडवर्टीजमेंट मेजर हॉस्पिटल्स के. अभी मुझे क्लिक हुआ वो वाला. और एक जमाना था, मे बी आज से 10 साल पहले तक भी, या जब हम बच्चे होते थे, मैंने तो कभी नहीं देखा था कि कभी किसी डॉक्टर की या उसके क्लिनिक का एडवर्टीजमेंट होता हो. शायद आप सब भी इसमें सहमत होंगे, ये तो एडवर्टीजमेंट पेशेंट ही करते थे. अरे उस डॉक्टर के पास जाना, हमारा बच्चा तो उसकी इतनी पूरी से ठीक हो जाता है। क्योंकि पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे क्या है, सबने अजमाया हुआ है। डॉक्टर्स को कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती थी। और आज का जमाना देख लीजिए, ये क्यों आया? ये बहुत अच्छा जो आपने क्वेश्चन पूछा, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ ट्रस्ट। मैं जब डॉक्टर बन रही थी तो मेरे सारी फैमिली के सब लोग डॉक्टर्स अमेरिका में थे, इधर ही आ जा। क्यों? कहते देख यहाँ ही आ जा, यहाँ ही अच्छा है। पर मैंने कहा अच्छा आपने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया? कहते नहीं नहीं मैंने तो वकील बना दिया है। कि क्यों? कहते बहुत लीगल है वहां पे, जरा सा करते तो केस हो जाता है। और आज भारत की हालत देख लीजिए, दिस इज व्हाट इज ट्रस्ट है ना। और जब हम साइंस में पढ़ते थे, मुझे अभी तक वो बात याद है, जब हमें पढ़ाई गई थी फार्माकोलॉजी, कौन सी दवा किस इलाज के लिए, तो उसमें बहुत अच्छी बात बताई थी। और वो ये बताई थी व्हाट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इसे दवाई का कितना परसेंट तो प्लेसिबो इफेक्ट है। आप एस्पिरिन दे दीजिए और सिर दर्द ठीक हो जाए, और या आप छोटी सी गोली कुछ भी बी कॉम्प्लेक्स या होम्योपैथिक गोली या कोई भी दे दीजिए, और 70% में उनका भी ठीक हो जाता है, जबकि उसमें कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रस्ट इन ए डॉक्टर। सो हीलिंग इज नॉट गिवन बाय डॉक्टर, हीलिंग बाय आवर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। और आज क्या हालत होगी? अब हम सब समझते हैं, समझदार बैठे हैं। तो मैं इन शॉर्ट बताना चाहूंगी, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, और परंतु आंसर होते हुए भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि होल थिंग इज चेंज, सिनारियो इज चेंज। नाउ द पावर इज नॉट इन साइड, पावर इज मनी, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड। तो अभी हमें फिर से, जब यहां हम आए तो हमने देखा, सभी ने आके देखा कि सबसे अच्छा यहां पे रिलेशन क्या बना है। जो लोग यहां पहली बार ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं, या दूसरी बार भी आए हैं, या बार बार आते हैं, तो आपको यहां क्या मिलता है? हमारे ये क्या लगते हैं? कुछ लगते हैं? हमें कितना प्यार मिला यहां पे, कितनी फीलिंग आई, लगा ना कि ये हमारा ही स्थान है। और जो यहां हमको ट्रीट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आपको तो जानते ही नहीं कौन यहां कर रहा है, कराने वाला कौन है, वो तो सामने ही नहीं आया अभी तक। और वो जो कर रहे हैं हमें क्या दे रहे हैं, उनका इनर प्यार, उनकी प्योरिटी, उनका हमारे लिए एक श्रद्धा, एक भावना, ये सब। और आपने देखा ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां चलाने वाला स्वयं भगवान। और हम भी जब ट्रीटमेंट लिखते थे तो RX मतलब वो करा रहा है और हम लिख रहे हैं। सो ऐसी फीलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटनेस जो हमने यहां देखी, दिस इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ ट्रस्ट वी आर डेवलपिंग। अब हमको विश्वास है ना, जो मैं भोजन खिला रहे हैं उसमें कितना कल्याण है, और पीछे करने वालों को कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो दिस इज व्हाट वी शुड स्टार्ट विद, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट वी नाउ गॉट द आंसर एंड हाउ वी कैन डू इट एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ।
थैंक यू सो मच डॉक्टर उषा किरण। सो वी कम टू दिस कंक्लूजन कि जो हमारे गुण हैं, और जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने की प्यार की, अगर हम प्यार के गुण को अपने व्यवहार में लेकर आएंगे तो वो ट्रस्ट वाला फैक्टर हम रीबिल्ड कर सकते हैं। इस प्यार के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर ब्रजेश उनसे पूछना चाहती हूं कि ट्रस्ट में वो क्या कहेंगे। और एक और चीज कि जब भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ डॉक्टर की गलती है या पेशेंट की भी गलती है, और अगर दोनों की है तो उसमें सर किस तरह से हम आगे बढ़े?
ओम शांति। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो यू नो ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिलेशनशिप। वर्ल्ड में जितनी भी रिलेशनशिप है सब में ट्रस्ट का बहुत रोल है, एंड लाइक दिस डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक टाइम था जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता था तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आता था कि मेरा पेन यहां पर रिलीव होगा। और अभी जब पेशेंट एंटर करता है हॉस्पिटल में तो उसकी हालत वही होती है जो किसी को पुलिस स्टेशन में एंटर करते टाइम होती है। सबसे पहले वो ये सोचता है कि मैं यहां से बच के कैसे निकलूंगा, है ना, मेरे साथ यहां कोई चीटिंग तो नहीं होगी, पता नहीं मुझे कौन सी जांचें लिखी जाएंगी, पता नहीं मुझे सुना भी जाएगा या नहीं, डॉक्टर पता नहीं मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करेगा, कितनी जांच है, मेरा कितना बिल बनेगा, मेरे मरीज के साथ कुछ होगा भी या नहीं। तो ये सब ओवर द टाइम डेवलप हुआ है. लाइक मॉर्निंग में हमने सुना कि कलयुग है, तो कलयुग के हिसाब से ये सब डेवलप हुआ. लेकिन अब बात यह कि हमें इसको ओवरकम कैसे करना है. जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, लाइक आई एम इन प्राइवेट प्रैक्टिस, तो प्राइवेट हॉस्पिटल रन करना, आप जो भी रन कर रहे हैं सब जानते होंगे कैसे. उसमें भी बीइंग हमारा जो हॉस्पिटल है वो नेफ्रो यूरोलॉजी, मतलब डायलिसिस पेशेंट, यू नो एवरी पेशेंट इज एट रिस्क एवरी डे. तो वो जब एंटर करते हैं तो मुझे जो लगता है, मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में राजयोग सीखने के बाद जो इम्प्लीमेंट किया है, द मोमेंट दे एंटर उनका जो सबसे पहला कन्फ्रंट जो होते हैं वो रिसेप्शनिस्ट से होते हैं. हमारा स्टाफ, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ब्लेम अवर स्टाफ कि हमारा जो स्टाफ है वो ढंग से बात नहीं करता है उनसे, और प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है. तो स्टाफ की लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी है, स्टाफ को ट्रेन करना. तो सबसे पहले मैं जो अपने स्टाफ का जो मीटिंग लेता हूं, मैं उनको एक ही बात समझाता हूं कि यहां पर आप किस लिए आते हो, काम करने मींस पैसा लेने. पर आपका जो पैसा है वो आपको मैं नहीं देता हूं, आपका जो पैसा है वो ये पेशेंट देता है. क्योंकि उनको भी ये फीलिंग आना चाहिए कि इस पेशेंट से ही मेरी ब्रेड एंड बटर, मेरी जो फैमिली रन करेगी वो इस पेशेंट के पैसे से रन करने वाली है. तो स्टाफ जब आपका बाहर रिसेप्शनिस्ट आप बिजी है, आप ऑपरेशन में है, पेशेंट आया, उसको टाइम लग रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी इनपेशेंट. घर पे भले ही 10 साल हो जाएंगे लेकिन आपके यहां उसको 10 मिनट में डॉक्टर देखना चाहिए. तो उसका जो बिहेव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर जब पेशेंट आपके पास आता है तो जो मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप ट्रस्ट, आई थिंक इट्स योर कम्युनिकेशन. हाउ डू यू कम्युनिकेट विद देम. और उसमें भी जैसे आज शिवानी बहन ने मॉर्निंग में बताया कि हम ऐसे नहीं कि हम ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोले. जैसे कि मैं पहले, आज से 7 साल पहले जैसे बात करता था, पेशेंट आया, पेशेंट हमारे लिए एक जस्ट मशीन है कि हमारे को कैसे क्या करना है, इससे कैसे क्या करना है. लेकिन अभी क्या है, जब आता है तो उसको हमें सबसे पहली चीज जो है उसको रिस्पेक्ट देना है, कैसा भी पेशेंट हो, किसी भी कैडर का हो. क्योंकि जैसे कल गिरीश भाई ने बताया ना, कोई बड़ा पॉलिटिशियन आएगा या बड़ा नेता आएगा उसको तो हम ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देंगे, भले ही मन में ना हो जबरदस्ती भी देते हैं. लेकिन जो और भी पेशेंट आते हैं गरीब, तो उनको हमारे को सबको दिल से रिस्पेक्ट देना है. वी जस्ट थिंक देम एज ए सोल. और जब हम ऐसा करते हैं तो बिलीव मी इतना फर्क पड़ता है पेशेंट के एटीट्यूड में. वो कितना भी कुछ भी एग्रेशन लेकर आया हो आपके पास, लेकिन काफी काम क्वाइट हो जाते हैं. तो बात है दिल से, अंदर से उसको रिस्पेक्ट देना, उसको सुनना. आप उसको ढंग से सुन लीजिए, बस 5 मिनट उसकी कंप्लेंट्स. कई बार तो क्या होता है, पेशेंट आया और उसके साथ में जो अटेंडर होते हैं वो उसको बोलने ही नहीं देते. उसने अपनी एक दो कंप्लेंट बताई, वो अटेंडर बोलेगा आप रहने दो, वो बोलना शुरू कर देता है. तो अटेंडर को आपको बड़े कामली क्वाइट करना है. पेशेंट को बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो एक बार बोल लेता है तो उसकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है. ये कुछ टिप्स हैं. दूसरा, फिर हम लोगों ने और भी कई चीज, लाइक हॉस्पिटल में जब पेशेंट एंटर करते हैं तो जो इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल का वो ऐसा नहीं लगना चाहिए उन्हें कि हम कहां फंस गए. हॉस्पिटल में हमने जगह जगह बहुत अच्छे स्लोगन्स वगैरह लगाए होते हैं. एक मेडिटेशन रूम हम लोगों ने हॉस्पिटल में बनाए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. और मोस्ट इफेक्टिव वे वॉज दिस टू कम्युनिकेट विद हिम, हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट्स.
थैंक यू सो मच डॉक्टर ब्रजेश. जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें निकल कर आई, हमने कभी नहीं सोचा होगा. हम हमेशा ये सोचते हैं कि पेशेंट हमारे पास आया है तो पेशेंट को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ऐसा शायद कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि हमें पेशेंट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमने उसको कभी इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं कि हम पेशेंट को रिस्पेक्ट करें. एंड दैट इज द शिफ्ट इन अवर कॉन्शियसनेस, इन अवर अप्रोच फॉर अवर ट्रीटमेंट. बिकॉज हम पेशेंट को पेशेंट की तरह ना देख के जो हमें आज नॉलेज मिली उसको आत्मा की तरह देखना है. तो दैट ब्रिंग्स द रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी, और उसके बाद फिर हमारा रिस्पेक्ट आएगा. और दूसरी चीज जो आपने कही एनवायरमेंट की, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. डॉक्टर किरण बाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर एंड वी से वी हैव अ वेरी वेरी लिमिटेड टाइम इन गवर्नमेंट प्लेस. ओपीडी में शायद 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट होते हैं एक पेशेंट के लिए इन अ टाइम स्पैन ऑफ 9 to 1. ये प्यार वाली भावना पेशेंट के साथ, उसको रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें इतने कम समय में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपने कैसे अप्लाई की इस हेक्टिक और क्योटिक शेड्यूल में जो गवर्नमेंट सेटअप में हमें देखने को मिलता है.
शांति,
आपने बिल्कुल ठीक कहा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काफी डिफरेंस है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं मोस्टली वो अनएजुकेटेड पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के होते हैं, उनकी नॉलेज उनकी अवेयरनेस बहुत कम होती है। बेचारे घर से निकलते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कहाँ जाना है, रास्ते में 10 लोग उनको डायरेक्ट करने वाले होते हैं, अब यहाँ चले जाओ, अब यहाँ पर्ची बनवानी है, अब इसको इस गेट पे जाना है, अब इस कमरे में जाना है, एंड बाय द टाइम दे रीच टू द डॉक्टर दे आर सो इम्पेशेंट कि उनको एक मिनट भी वेट करना मुश्किल लगता है। तो जैसा कि ब्रिजेश भाई ने भी बताया, हमें उनको रिस्पेक्ट से प्यार से ट्रीट करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं जो मेरे मन में फीलिंग आती है कि ये एक आत्मा इतनी परेशानी में दुख में दर्द में आई है हमारे पास, तो इसको मैं किस तरह से इसका दर्द इसका कष्ट दूर कर सकूं, तो उसके लिए अपने आप में एक बहुत पेशेंस चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट कुछ भी बोले हमें उसको टॉलरेट करना है। कई बार नाराज भी हो जाते हैं, गलत बात भी कह देते हैं, तो अगर हम रिएक्ट करेंगे तो फिर वो हमारी ट्रस्ट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा। कई बार पेशेंट आता है उसके पास इतनी मोटी फाइल होती है, खासतौर पे न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, सब ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, वो चाहता है कि मुझे एक सेकेंड ओपिनियन चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि बिजी ओपीडी में 50 पेज की फाइल में आप नजर भी नहीं मार सकते। तो ऐसे में फिर मैं ऐसे पेशेंट्स को अलग से टाइम देती हूँ, उनको अलग टाइम में नॉन ओपीडी डे पे कॉल करके, ताकि उनको सेटिस्फाई कर सकूं। क्योंकि जो आदमी इतनी उम्मीद से इतनी दूर से आया है, उसको ध्यान से उसकी बात जब तक नहीं सुनेंगे उसको तसल्ली नहीं होगी। तो मुझे लगता है इसके लिए डॉक्टर को अपने आप में पेशेंस लाने की बहुत जरूरत है। अगर हम थोड़ा भी इम्पेशेंट होते हैं तो हम ये सर्विस नहीं दे सकते। और दूसरी चीज है कि मेरे जो जूनियर स्टाफ है उनको ट्रेन करना। उनको मैं यही बताती हूं कि जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपका आइडेंटिटी है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं डॉक्टर सो एंड सो, मैं सिस्टर सो एंड सो। हमारी मेडिकल प्रोफेशन में हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल पैरामेडिकल, हमारी आइडेंटिटी किस वजह से है? पेशेंट की वजह से ना। आज अगर पेशेंट नहीं है तो हॉस्पिटल का कोई मायना नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वट एवर वी आर बिकॉज ऑफ अवर पेशेंट, सो दे डिजर्व अवर रिस्पेक्ट अवर लव, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अब जो इम्पोर्टेंट बात इस राउंड के बाद हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहली चीज, अगर अप्रोच फॉर द पेशेंट, वी शुड सी हिम एज अ सोल, प्यार की भावना, रिस्पेक्ट और पेशेंस। इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें ही करना है, इस तरफ से ही शुरुआत करनी है। और सिर्फ ये डॉक्टर पेशेंट की बात नहीं है, यहाँ पर सिस्टर्स भी बैठी हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, आपको पता है नर्सिंग स्टाफ का कितना मेजर रोल है इस रिलेशनशिप में। सबसे ज्यादा केयर डॉक्टर तो राउंड्स में 5 मिनट के लिए आएंगे, पूरा दिन का ध्यान तो उनका नर्स ही रखते हैं, उनका कितना मेजर फैक्टर है। तो अब हमें इसकी शुरुआत हमें ही करनी है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, आजकल पेशेंट की तरफ से भी थोड़ी प्रॉब्लम है, पर वो हमें डिस्कस नहीं करनी। जब ये रिश्ता खराब हुआ था तब पहल डॉक्टर्स की तरफ से हुई थी, अब दोनों में प्रॉब्लम है, लेकिन अब ठीक करना है तो अभी पहल हमें ही करनी होगी और हमें अपने कैरेक्टर को और पर्सनैलिटी को उभारना है। अगले टॉपिक में मैं आती हूँ। डॉक्टर उषा किरण, एनवायरमेंट की कुछ टॉपिक ब्रजेश भाई ने बात की कि हॉस्पिटल का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, एक डॉक्टर की पर्सनैलिटी और आसपास का एम्बियंस जिसे कहते हैं, आप इसमें क्या कहेंगे कि इसका क्या योगदान है इस रिलेशनशिप में?
जब ये टॉपिक एम्बियंस की बात चली तो मेरे को एक पहले ख्याल आया, जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज स्टार्ट किया और वो चेंज क्या था, मैं और बिकॉज बीइंग इन ए कार्डियक न्यूरो सेंटर ऑफ एम्स, तो डॉक्टर जो न्यूरोलॉजिस्ट थी वो मेरे पास बैठी और मुझे आके बोली कि इतनी लंबी लाइन होती है मुझे तो गुस्सा ही आ जाता है, और एक एक आके कहता है आपने ये दवाई दी मुझे ये ठीक नहीं हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो इतने में एक हमारी कोई कॉमन फ्रेंड थी, उसको मैंने भेजा था किसी काम के लिए, तो वो बोली डॉक्टर आपको इतना गुस्सा आ गया कि मैंने कुछ बात ही नहीं किया और आपका भीड़ भड़का इतना ज्यादा था। तो हम लोगों ने बैठ के एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया, आई थिंक दिस इज द टाइम आई कैन टेल एट दैट बिकॉज आई बीइंग इन राज योगा मैंने कुछ सीखा, तो मैं औरों को नहीं दूंगी तो आई बी कॉल्ड ए माइजर कंजूस जो अपना लेके भगवान से और किसी को देती भी नहीं है। तो मैंने उनको बताया देखो हम एक काम कर सकते हैं, आपके कौन से पेशेंट है जिससे आप तंग आ जाते हो और आपको गुस्सा आ जाता है। बोली एक तो ये हेडेक वाले पेशेंट है ना, ये बहुत सिरदर्दी है। क्या कहते वो मेरे लिए भी हेडेक है, ना तो वो ठीक होते हैं ना वो पीछा छोड़ते हैं, और कभी कह देंगे मैडम हमने तो एक्यूप्रेशर भी करा लिया फिर भी नहीं सिरदर्द ठीक हुई, कभी कह देंगे हम तो डाइटिशियन के पास भी गए तो भी नहीं सिरदर्द ठीक हुई, कभी हमने वो क्या आजकल कोई और थेरेपीज आ रही हैं वो सारी थेरेपी करा, रेकी भी करा ली तो भी नहीं ठीक हुई, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी, मतलब हम सब जगह घूम आए हैं और आपने जो दवाई दी ना अब वो यूज अब तो फायदा ही नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने तीन डॉक्टर्स बदल लिए। तो जब ऐसी हालत होती है तो गुस्सा आ जाता है, तू जानवर ठीक तो होना नहीं है। मैंने कहा चलो हम ऐसा काम करते हैं हम हेडेक के ऊपर एक रिसर्च करते हैं। कहते कैसे, मैंने कहा तुम पेशेंट भेज देना मुझे और हम एक ऐसा वाला रूम बनाते हैं, उस रूम में हम उनको थोड़ा राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा जो यहां सिखाया जा रहा है वो तो नहीं सिखा सकते, आप समझते हो सिरदर्द वाले पेशेंट को पेशेंस होती है कि हम उन्हें कुछ सुनाए और वो सुने, वो तो कह देंगे बस करो बहुत हो गया आप भी भाषण कर रहे हो, तो अब क्या करें। फिर हमने एक छोटा सा कैप्सूल डेवलप किया कि उनके क्या खाने में कमी होती है, क्या उनके सोच में कमी होती है, खैर कर करके एक्सपेरिमेंट करके तो हमने कोशिश किया एक ऐसा रूम बना के जहां पे हम भी मेडिटेशन करें थोड़ी देर के लिए आके, जब डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं होता, और उनको भी स्मॉल स्मॉल उसमें सिर्फ हाफ एन आवर प्रोग्राम में उनके रिलेशन के साथ, क्योंकि आधी हेडेक उनका रिलेशन होता है जो साथ में आता है, क्योंकि उनको सिरदर्द इसलिए कि वो घर में परेशान है या ऑफिस में परेशान, तो कर करा के हमने एक ऐसा तरीका बनाया और उस रिसर्च को इम्प्लीमेंट कराया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका ग्रांट लेके प्रॉपर एक रिसर्च बना के, और उनको इतना फायदा हुआ इस बात का जब राजयोग मेडिटेशन सिखाया और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच फूड के ऊपर कि कैसे आपने जो मेडिटेशन आप अभी प्रैक्टिस करोगे सिर्फ तीन मिनट के लिए वो अपनी वेव्स फूड के ऊपर रखोगे और स्पेशली फ्रूट के ऊपर, उसके ऊपर काफी रिसर्च करके हमने उसमें जो ब्रेन के बीटा एंडॉर्फिन चेंजेस आते हैं, जो कॉर्टिसोल चेंजेस आते हैं, सेरोटोनिन चेंजेस आते हैं और मेलाटोनिन चेंजेस जिससे उनकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब हो रही थी वो सब कुछ देखा, और विद इन 3 मंथ्स उनका इतना चेंज आया कि बिहेवियर तो क्या, वो डॉक्टर को जाके कहने लगे उसी डॉक्टर को आपने तो बड़ा अच्छा तरीका सिखाया, हमारे फलाने को भी ले आते हैं उसको भी ले आते हैं मेरी सिरदर्द ठीक हो गई। और उनका सुनते वो न्यूरोलॉजिस्ट कहते पहले तो मुझे सिखाओ, पहले तो मेरा टेम्परामेंट जो ठीक हो जाता है गड़बड़ उसे सिखाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपना वातावरण इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे बनाते हैं, एंड वाई नॉट टू हैव ए स्मॉल प्लेस विच इज राजयोग रूम टाइप या कुछ जिससे हमें भी बेनिफिट हो, और उसका बहुत अच्छा हमने इसके मतलब जर्नल में भी प्रेजेंट किया बाहर भी प्रेजेंट किया, आई थिंक इट इज वेरी बेनिफिशियल टू मी एंड द पेशेंट ऑल्सो।
दैट्स वंडरफुल। जो रिसर्च हेडेक की आपने की है वो आप गूगल पे करेंगे तो पब्लिश भी हो चुकी है, आप उसकी डिटेल्स जाके देख सकते हैं, मॉड्यूलेशन ऑफ कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स क्रॉनिक टेंशन हेडेक बाय राजयोग मेडिटेशन। ओके डॉक्टर ब्रजेश, यू टॉक्ड अबाउट द एनवायरमेंट इन हॉस्पिटल, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन। जैसे उन्होंने कहा था वो न्यूरोलॉजिस्ट को हेडेक होता है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और लीगल इश्यूज आर मोर इन प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि कितने लीगल इश्यूज आपको देखने के मिलते हैं और उनसे आपको कितना हेडेक होता है।
ये क्वेश्चन आपको 7 साल पहले पूछना चाहिए था, आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। बट अभी पेशेंट कभी हेडेक नहीं करता है, जैसा बताया शिवानी मैंने सुबह कि इरिटेट हम होते हैं, वो इरिटेट नहीं करता है, इरिटेट हम होते हैं। हॉस्पिटल के एनवायरमेंट की बात चल रही थी, तो जब मैंने अभी अपना नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया तो उसमें जो मेरे आर्किटेक्ट को जो मेरा इंस्ट्रक्शन था, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि पेशेंट जहां बैठते हैं उनका जो वेटिंग एरिया है दैट शुड बी द मोस्ट कंफर्टेबल एरिया ऑफ द हॉस्पिटल। क्योंकि हमारा जितना भी कंफर्ट है वो कहां से आ रहा है? पेशेंट से। तो हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हम इसी चैम्बर में बैठे हुए हैं, आराम से हमारा एक फ्रेंड आ गया, हम उसके साथ 15 मिनट कॉफी पी रहे हैं और बाहर हमारा पेशेंट गर्मी में है ना, वो पसीने उसको आ रहे हैं, तो सोचिए उसके वाइब्रेशंस कैसे वाइब्रेशन में हमारे को भेजेगा। पूरी बात जो है ना वो वाइब्रेशंस की है कि वो हमारे को कैसे वाइब्रेशन भेज रहा है और हम उसको क्या दे रहे हैं। तो हमारे हॉस्पिटल्स में हमने क्या किया है, हमने हॉस्पिटल्स में जो वेटिंग एरिया है वहां बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स, जैसे आप यहां पूरे में जाएंगे, पूरे जब भी आप डाइनिंग हॉल में जाएं या कहीं भी जाएंगे आप सब जगह देखेंगे स्लोगन्स लगे हुए हैं। तो इस तरह के स्लोगन्स हमने हॉस्पिटल में लगाए हुए हैं। फिर हमने एक हॉस्पिटल में मेडिटेशन रूम बनाया है, जो ग्राउंड फ्लोर ओपीडी होता है जहां पर सिर्फ एक मेडिटेशन रूम है जहां पर कि वो बैठकर आराम से, जब भी मुझे लगता है कि मुझे आधा घंटा लगेगा पेशेंट को देखने में तो मेरे रिसेप्शनिस्ट को इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि पेशेंट और उसके अटेंडेंट को एक ग्लास ठंडा पानी पिला के मेडिटेशन रूम में बिठा दो और बोलो कि सर अभी आने वाले हैं, जो भी युक्ति उसको आती है तो वो मैनेज करती है। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ मेडिटेशन रूम का। जब बीइंग ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो क्या होता है, किसी भी पेशेंट किसी भी स्पेशलिटी का हो लेकिन जब भी क्रिएटिन वगैरह बढ़ा तो वो हमारे यहाँ रेफर हो जाता है। एक पेशेंट था जिसका हेड इंजरी का, आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स, तो उसका जो स्कोर होता है GCS स्कोर वाज वेरी लो, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, एंड मोर ओवर उसके ऊपर वो उसने वेंटिलेटर पर पेशेंट है, ही डेवलप चेस्ट इन्फेक्शन ऑल्सो, लिवर फंक्शन डेरेंज, तो दैट पेशेंट वाज रेफर टू अस। उस पेशेंट की फैमिली में ही वॉज ओनली अर्निंग मेंबर, उसकी वाइफ थी और 2 बच्चे और कोई करने वाला भी नहीं, सारे रिश्तेदार बहुत दूर दूर के। पेशेंट भी बाहर का, वो एडमिट हुआ। जब वो आया तो हमारे को ऐसे में एक तो ये भी डर लगता है ना, ये पेशेंट का आउटकम पुअर है, पहले से एक्सप्लेन करना होता है सब कुछ, तो उसको डेली बुला के हम 2-3 दिन एक्सप्लेन करते थे उसकी वाइफ को। मीन वाइल उसको ये भी बोला कि आप एक काम करो, देखो मेडिसिन तो हम देंगे ही जो सबको देते हैं, पर आप ये बगल में रूम बना हुआ है मेडिटेशन, आप इसमें जाके 10-15 मिनट रोज बैठा जरूर करो। और हमने क्या किया है, हमने जो पास का सेंटर है वहां की बहनों को बोल रखा है, तो वो टाइम टू टाइम आती हैं और उन लोगों को फिर मेडिटेशन कोर्स कराती हैं। तो जब वो उसकी वाइफ डेली जाकर के मेडिटेशन हॉल में बैठती थी, और क्योंकि फ्री टाइम रहता है पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पर, तो अटेंडर को कुछ करने तो होता नहीं है, सिर्फ मेडिसिन कभी लानी होती, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि ये मेडिटेशन रूम क्या है, कौन चलाता है, क्या होता है यहाँ, इसका क्या इफेक्ट है। तो जब 3rd-4th day हो गया पेशेंट वेंटिलेटर पे, तो मैंने उसको एक दिन चैम्बर में बुलाया, मैंने कहा इसको पूरा प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर दूं, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे नहीं है, इफ दे वांट टू शिफ्ट दे कैन शिफ्ट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मैंने उनको बुला के बोला कि आपका पेशेंट ऐसा ऐसा है और हम लोग को नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ बहुत अच्छा आउटकम है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर ARDS में पेशेंट है, हेड इंजरी ऑलरेडी, मल्टीपल कंट्यूजन्स हैं, लिवर फंक्शन डिरेंज्ड, तो आउटकम बहुत पुअर है। तो व्हाट शुड बी द, आपके हिसाब से क्या उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए? वो लेडी जिसका हस्बैंड ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, 2 छोटे बच्चे, और आप उसको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आउटकम इज वेरी पुअर, वी डोंट हैव एनी होप, तो उसका चेहरा कैसा हो जाना चाहिए? है ना, आप सब समझ सकते हैं, बट टू माई शॉक उसका रिएक्शन क्या था, मैंने सी स्माइल्ड और बोली मुझे मालूम है क्या होना है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आपको जो करना है वो आप करोगे, लेकिन आप अपने बाबा से सब कुछ ठीक करा लोगे। हर कॉन्फिडेंस इन 3 डेज ही लर्न राज योगा, एंड 3rd-4th day ही इज टेलिंग मी कि मुझे मालूम है आप अपने बाबा से सब कुछ करा लोगे, डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, ना मैं कोई केस करने वाली हूँ ना मैं कुछ और करने वाली हूँ। एंड द पेशेंट रिमेन्ड इन हॉस्पिटल फॉर 15 डेज एंड ही रिकवर्ड कंप्लीटली रिकवर्ड। आज भी वो लेडी बाहर से आती है उस रूम में बैठ करके चली जाती है, मुझसे भी नहीं मिलेगी कभी, कई बार टाइम होता है तो मिलती है, अदरवाइज उस रूम में बैठ करके चली जाती है। और उसने वहां जाकर के अपनी जगह पर शी स्टार्टेड रेगुलर क्लासेस, और जाने कितने लोगों को बताया कि वो एक हॉस्पिटल है जिसमें मेडिटेशन रूम है, वहीं जाना. सो वी डी नीड नॉट टू एडवर्टाइज एनीथिंग, अपने आप ही सब होता है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम अगर ध्यान रखें तो हॉस्पिटल का एनवायरमेंट बहुत अच्छा हो सकता है. लेकिन इसमें वही है, जैसे सब कुछ करना दिल से है, ऊपर से नहीं करना है. वाइब्रेशंस हमारे बड़े प्योर होने चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा जो भी कंफर्ट है वो पेशेंट से आ रहा है. तो मेरे ब्रेड बटर जो है वो पेशेंट से आ रही है. जब हम ये सोचेंगे, ये थॉट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल रिस्पेक्ट देम, वी विल हैव लव फॉर देम एंड वी विल गिव रिगार्ड टू देम.
दैट्स अमेजिंग. बाबा जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मैं आपको बताऊं, परमात्मा को प्यार से हम बाबा कहते हैं. तो उनका कहने का अर्थ था कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा. और अगली चीज जो मैं जानना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा वाइब्रेशंस की, सारी बात फिजिकल टाइम की नहीं है यहाँ पे. जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर किरण बाला बता रहे थे, फिजिकल टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स इम्पॉर्टेंट कि वॉट वी आर थिंकिंग इनसाइड फॉर द पेशेंट. इफ वी हैव गुड वाइब्रेशंस, सेकेंड्स विल डू द मैजिक. इफ समथिंग इज नेगेटिव इनसाइड, देन वन आवर काउंसलिंग पॉजिटिव आउटसाइड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट एट ऑल. और यहां पे एक वक्त है बताने का आपको कि एम्स में, जैसे उन्होंने बताया कि वी हैव अ मेडिटेशन रूम इन एम्स, वी हैव अ मेडिटेशन रूम इन अ हॉस्पिटल इन अ प्राइवेट सेक्टर, वी हैव अ मेडिटेशन रूम इन जीबी पंत हॉस्पिटल इन दिल्ली, अनदर मेडिटेशन रूम इन जीटीबी हॉस्पिटल यूसीएमएस इन दिल्ली, एंड देयर नंबर आई कैन नेम मेनी मोर इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. और गवर्नमेंट का भी ये रूल है कि एक योगा रूम एमसीआई की तरफ से हर हॉस्पिटल में होना चाहिए. लेकिन उस योगा रूम बहुत सारे बने हुए हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि इस रूम में क्या हो रहा है. और जो जो हो रहा है वो आपने अभी सुना कि इसमें हमारे कितने एफर्ट होने चाहिए, उन पेशेंट को अटेंड करने वाला कोई होना चाहिए. जीटीबी हॉस्पिटल में जो ब्रह्मा कुमारीज का नियरेस्ट सेंटर है, वहां की बहनें दोपहर में 2 घंटे आती हैं पेशेंट और उनके रिलेटिव को अटेंड करने के लिए, एंड दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे डॉक्टर ब्रजेश ने बताया, सेंटर की दीदी आके मेडिटेशन कोर्सेज कराती है. सो वी नीड टू अटेंड दोज पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स. डॉक्टर किरण बाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, क्या नई पॉलिसीज, क्या वर्कशॉप या ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर्स के लिए, कि जिससे उनको एक अच्छी कम्युनिकेशन आ जाए या अच्छा बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको वो डेवलप कर सके.
ये आपने बहुत अच्छी बात कही. अभी हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई है, अब उसका सॉल्यूशन चाहिए. और उसका सॉल्यूशन एक के करने से नहीं होगा, हम सबको मिलके करना पड़ेगा, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस सभी इन्वॉल्व हैं. तो जिस भी एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें इतनी मोटिवेशन चाहिए कि हम अपने आप को इतना एम्पावर कर सकें कि ये सब जो चीजें अभी हमने डिस्कस की, हम अपने पेशेंट्स को लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट दे सकें. तो उसके लिए हमारे जो रूटीन करिकुलम है उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हो गया है हमारे करिकुलम में ये ऐड किया जा रहा है. और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मेडिकल फील्ड में ऐड किया जा रहा है. कुछ ये चीजें हमारी टेक्स्ट बुक में भी आ गई हैं. और अभी हमारे वहां एक रिसेंटली बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई थी बायो एथिक्स, एंड इट वाज बाय एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. और ये अवेयरनेस अब आ गई है कि हमें सारे हॉस्पिटल्स में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से थी, और हमारा हॉस्पिटल पीजीआई रोहतक इज बिकम ए नोडल सेंटर फॉर दैट, जहां पे डॉक्टर्स को एथिक्स सिखाया जाए, विच इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग विच वी आर लर्निंग हियर. तो अभी मैंने भी अटेंड की थी, 3 दिन की बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई थी जिसमें सारे मेडिकल कॉलेजेस की ऑल ओवर हरियाणा डेंटल कॉलेजेस के फैकल्टी को बुलाया गया था ताकि वो उस करिकुलम को टीचिंग करिकुलम में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ऐड कर सकें. तो इट वॉज for a training for the teachers, and this is going to continue. Abhi sare medical colleges mein bioethics department aur ek bioethics subject add ho raha hai, jiske beech mein hame ye hamare ethical aur legal issues ke bare mein training di jayegi students ko bhi aur post graduates ko bhi. Aur main samajhti hu isme agar hum apna ek subject spirituality ka hamari taraf se add ho jaye to it will be another addition and it will help the doctors to follow. Hum bahut sari cheeze jante hain, hame pata hai, lekin fir bhi hum usko follow nahi kar pate kyunki hamare ko apne aap ko empower karne ki zarurat hai, jo ki I think ye bahut sahi jagah pe aap sab log aaye hain jahan aap apne aap ko jitna chahe empower kar sakte hain, kyunki power house ke sath aapka connection hai, to jitni power aap chahe aap le sakte hain. To main samajhti hu that will help a lot in improving the doctor patient relationship. Ye awareness ab sab mein aa rahi hai kyunki agar hamara relation ye improve nahi hoga to it's going to add more and more problems and especially the legal issues which should be prevented.
Thank you so much Dr. Kiran Bala. Aapne ethics ki baat ki. Ethics MCI hamesha sabko sikhana chahti hai. Jab maine MBBS shuru ki thi to hamare teachers ne hame bedside manners sikhaye the. Ab ye hai physical level pe cheeze seekhna ki pyar se baat karna, kaise patient ko respect karna, lekin jaise aapne kaha ki spirituality ka factor usme dalna chahiye aur jis pe hum kaam karte hain soul ke level pe ki aatma ke kaun se gun hai aur unko kaise hame bahar nikalna hai. To agar dono cheezon pe hum kaam karenge to definitely hamari personality outer nahi lekin inner personality doctor ki strong ho sakti hai. Dr. Usha Kiran ji, main aapse puchna chahti hu ki anything you have done in AIIMS regarding these workshops or trainings?
जहां तक ट्रेनिंग की बात है, आप चाहते हैं जैसे डॉक्टर ब्रिजेश भाई ने भी कहा कि आप तो बहुत अच्छा अपने आप में चेंज चाहते हैं, परंतु अपने चेंज के साथ पेशेंट के साथ भी व्यवहार अच्छा करते हैं, पर आपका जो स्टाफ है वो कैसा है? तो इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल याद है जो हमने स्टार्ट किया, और मैं आपको बता दूं हमारा एम्स का यहां पे काफी स्टाफ आया हुआ है, शायद आप देख नहीं पाएंगे मिक्सर बीच में वो, और दे आर रियली ग्रेट ट्रेन्ड that they are now giving training. I think more than 25 people are sitting over here, doctors, nurses, technical staff, physiotherapists, all kind of people have come from AIIMS, and I really appreciate them because not training is not given by me, training is given by them, and my everything responsibility has been taken by them. Wo yahan se start hua, ek patient tha, young boy 14 years, aur uska naam bhi mujhe yaad hai, वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके हार्ट में इन्फेक्शन था, बिहार से आया हुआ था और वो ठीक नहीं हो रहा था. एक साल वो हॉस्पिटल में रहा, उसको ऐसे इंजेक्शन लगते थे कि हार्ट के लेवल पे जो अंदर इन्फेक्शन चला गया वो ठीक हो जाए, और एक साल उसने सबको ऑब्जर्व किया, और वो जब हमारे रूम में आता था, मेडिटेशन रूम में आता था, तो कहता था आप इतनी अच्छी बातें बताती हैं, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, पूरी रात को सिस्टर लड़ती हैं आपस में, कभी वो ड्यूटी के लिए लड़ती हैं, कभी वो किसी और को डांट लगाती हैं, तो ये ट्रेनिंग आप अपने सिस्टर्स को नहीं देते हो क्या? और रियली मुझे बहुत शर्म आती थी, जबकि नर्सेस ट्रेनिंग के अंदर देयर आर सो मेनी सिस्टर्स, कॉलेज के यहाँ बैठे हुए प्रिंसिपल्स भी उस ट्रेनिंग में दिया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंट केयर, कंप्रेशन वैल्यूज कोर्स के अंदर. आई थिंक सब मेरे साथ सहमत होंगे, इवन टेक्नीशियंस को भी सभी की ट्रेनिंग के अंदर ये बताया जाता है कि ये कैसे करना है. और डॉक्टर किरण ने अच्छा रेज किया, एथिक्स तो है पर वो स्पिरिचुअल बेस नहीं है, वो हमारे अंदर घुसा नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कॉरपोरेट में, आप कॉरपोरेट में सिखा देते हैं प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, वो तो आर्टिफिशियल स्माइल हो जाता है. व्हेन ए पर्सन कम्स, चाहे होटल है चाहे कुछ है, स्माइल करना दैट इज आर्टिफिशियल. स्माइल शुड बी इनर स्माइल. आपको यहां किसने स्माइल करने के लिए कहा? एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव स्माइल्ड? दिस इज व्हाट इज इनर अचीवमेंट, अंतर प्राप्तियां होती है. तो वर्कशॉप्स वगैरह ट्रेनिंग हम लोग रोज एक घंटा जो लंच टाइम होता है, वो लंच टाइम में वो लोग भाग रहे होते हैं किस लिए जल्दी से लंच खाओ या फिर हम बाद में खा लेंगे, हमें एक घंटा स्पिरिचुअल लेसन अटेंड करना है ब्रह्मा कुमारी का, और वो एक घंटा रोज होता है लंच, और सैटरडे को उनको भागने का दिन होता है, फिर भी 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि 1 बजे के बाद बच्चे वेट करते हैं, वो जरूर आते हैं। और स्पेशल प्रोग्राम जो हर एक जगह जाके कहते हैं आज हमें, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के 4 टॉपिक 4 सब्जेक्ट हैं, बता दो 2 मिनट में अगर परमिट करें, यहाँ पे आप आए हैं, इस नॉट ए सत्संग, इसे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट होता है पर याद रखना एग्जाम भी होता है, और हमारा हर वक्त एग्जाम है, आजकल तो बच्चे भी एग्जाम ले लेते हैं कि मॉम आप क्या सीख के आते हो, बच्चे भी कह देते हैं, और ये भी कह देते हैं आपके टीचर ने नहीं सिखाया था आपको, तो इसलिए एग्जाम तो हर स्टेप पे है, पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 है यहाँ पे, एक तो नॉलेज आप ले रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे, दूसरा मेडिटेशन ऑन द बेस्ड ऑफ नॉलेज, और थर्ड इनकल्केशन ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, और चौथा सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब हम लोग कर रहे हैं आप भी करते हो, वो है सेवा, निस्वार्थ सेवा। तो जो हमारे पास अपने जो ट्रेनिंग दी जाती है जो वो सब सीख जाते हैं, पहले 7 कोर्सेज जो है मेडिटेशन का, 7 लेसन, उसके बाद जो 8 लेसन है वो यहाँ की मुरली है, ज्ञान मुरली, जो वो समझ लेते हैं तो लगता है भगवान हमसे बात करता, और जब ये फीलिंग आनी शुरू होती है फिर आप सेवा के बिना नहीं रह सकते, वट एवर वी गॉट वी स्टार्ट स्प्रेडिंग इट आउट। और हमारे यहाँ जितने भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए लंच टाइम में 1 to 2 में आते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो कहते हैं आज हम डिवाइन सर्विस करेंगे, तो वो चाहे पेशेंट्स को, चाहे अपने कोलीग्स को, चाहे फ्रेंड्स को, रोज कोई ना कोई को एक लेसन और एक ब्लेसिंग जरूर देकर जाते हैं, एंड दिस इज वट एवरी डे इज गोइंग ऑन, एंड देन वी कीप ऑर्गेनाइजिंग एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ, एम्स में तो 18,000 एम्प्लॉयज हैं, और वो हम करते रहते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट मार्च में भी ड्यू है, यूजली 1 or 2 months में एक पूरे ऑडिटोरियम में ऐसा वाला वर्कशॉप हो जाता है, विच इज हाईली बेनिफिशियल।
थैंक यू सो मच। आप लोग एग्जाम्स के नाम से घबराए तो नहीं, ऐसे हमारे रोज एग्जाम्स होंगे यहाँ से जाने के बाद। वैसे मुझे लग रहा है कि कल से बहुत सारा होमवर्क मिल चुका है हमें, शिवानी बहन ने बहुत होमवर्क की बात की थी, अभी भी बात हो रही है कि सब कुछ करना है हमें करना है, अब एक और चीज ऐड कि अब क्या करना है, अपने स्टाफ को भी हमें ट्रेन करना है, गवर्नमेंट में जो हमारे जूनियर्स हैं उनको ट्रेन करना है, जैसे भाई साहब ने बताया कि अपने पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को हमें उन वैल्यूज को सिखाना है। एक और चीज जो मैंने अभी एक्सपीरियंस की, एमसीआई ने एक नया शेड्यूल इंकल्केट किया है जिसको कहा है कि एटकॉम मॉड्यूल, ATCOM, एटकॉम मॉड्यूल एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर से शुरू किया है। एक पूरे साल में उन बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखानी है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है और आपको मरीज से प्यार से कैसे बात करनी है, और एमसीआई ने वो चीज सिखाने के लिए 32 आवर्स दिए हैं, 32 घंटे में आपको बच्चों को सिर्फ ये सिखाना है। ये गवर्नमेंट का इनकल्केटेड शेड्यूल है जो मैमसी में एज पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू कर चुके हैं, एटकॉम शेड्यूल दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो आई शुड नाउ एम्फसाइज कि फर्स्ट ईयर से ही इसको हमें इनकल्केट शुरू करना चाहिए, तो शायद इस लेवल तक हमें इतने बड़े होके अब ये स्टेप लेने की जरूरत ना पड़ती। आप सभी सीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, बहुत सीनियर पोजीशन पे है, तो आपके जो जूनियर्स हैं आप उनमें ये चीज को शुरू कर सकते हैं, छोटी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर यंग जनरेशन, फॉर जूनियर रेसिडेंट्स, पीजीज एंड एमबीबीएस डॉक्टर्स। डॉक्टर ब्रजेश भाई, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था वो क्वेश्चन 7 साल पहले पूछना चाहिए था, उसका जवाब अभी मिला नहीं कि इतने इश्यूज आते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं, फिर भी आप कैसे डील करते हैं इश्यूज से, और राजयोग मेडिटेशन की लाइफ में आने के बाद अब क्या चेंजेस है आपके प्रोफेशनल करियर में, इन योर पर्सनल फीलिंग एज वेल एंड बिफोर?
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे कि मॉर्निंग सेशन में आपने सुना ना, हम क्या सोचते हैं, जैसे पेशेंट आया, ये आ गया इरिटेटिंग पेशेंट, ये आ गया मुझे इरिटेट करने, दैट वाज अवर नॉर्मल थिंकिंग बिफोर आई केम इनटू दिस ज्ञान। जैसे कोई पेशेंट आया और उसने आपको कोई एक क्वेश्चन कर दिया, आपने मेरा इतने दिन इलाज किया और ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो आपका जो ईगो था वो एकदम से बूस्ट अप हुआ, बोले अपनी तरफ देखते नहीं है, और फिर आपने उसको और एक बात बोली, फिर वो एक बात बोलता है और धीरे 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 क्या होता है, ये ईगो इश्यू बढ़ता चला जाता है, हमें लगता है कि हम इतने बड़े डॉक्टर और ये ऐसा पेशेंट हमसे ये सब बातें कर रहा है। तो ये सब रीजन जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स के जो रीजन थे सारे कम्युनिकेशन से अराइज होते हैं। आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी क्या होता है, पेशेंट कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आपका सिर्फ 10-15% एनर्जी जो है वो पेशेंट को मैनेज करने में लगती है, बाकी आपकी 85-90% एनर्जी सिर्फ इस बात में जाती है कि उसके अटेंडर्स को कैसे मैनेज करना है, वो नाराज ना हो उनको, बाकी सब चीजों में आपको हॉस्पिटल के स्टाफ को कैसे मैनेज करना है। तो ये सब क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि हमने पहले से ही, हमारी कोई प्री प्लानिंग है ही नहीं है। अगर हम अपने स्टाफ को पहले से ही ट्रेंड करके रखें तो आपका रिसेप्शनिस्ट एक इतना बड़ा फैक्टर है, अगर वो बहुत अच्छे से पेशेंट को टैकल करता है ना तो आपके पास आते आते तक तो वो वैसे ही आधा ठीक हो जाता है। तो हमारे को जो मोस्ट इफेक्टिव चीज मुझे जो लगी इश्यूज को रिजॉल्व करने में वो था कम्युनिकेशन। आप पेशेंट से बात करते रहिए, उसके अटेंडर से बात करते रहिए, कुछ भी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आज तक हुए हैं, अगर हम रिट्रोस्पेक्टिवली जाएं और उसको देखें तो हमारे को जेन्युइनली हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि अगर हम इस पॉइंट पर इसकी बजाय ये करते तो नहीं होता। जैसे कल के सेशन में था ना कि जब हमने कहीं गुस्सा किया, शिवानी बहन ने बताया ना कि आप वापस जाओ और देखो क्या कोई दूसरा ऑप्शन था मेरे पास। तो ऐसे ही जब हम पेशेंट्स के साथ कुछ भी इश्यूज हुए, अगर हम वापस जाके देखेंगे तो हमारे को दूसरे ऑप्शन 100% मिल जाएंगे। ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम चाहते तो उस कंफ्लिक्ट को आराम से अवॉइड कर सकते थे। पेशेंट को चेंज करना हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में क्या है, हम अपने को ही चेंज कर सकते हैं। बस यही एक दो तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली, और दे हैव हेल्प्ड अ लॉट। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 4-5 साल में कोई मेरे हॉस्पिटल में टचवुड कोई भी इशू किसी पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है जो बहुत बड़ा इशू बना हो।
और पर्सनल लेवल पे क्या चेंजेस आपको लगे मेडिटेशन के बाद?
लॉट ऑफ चेंजेस, लाइक सी नाउ, जैसा था कि हम पहले सुनते ही नहीं थे ना किसी को। पेशेंट ने बोला, उसने दो कंप्लेंट बोली और हमारा तो चालू हो गया, ये हो गया, बोले बिकॉज सुपर स्पेशलिटी में जो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी वर्कडअप होकर आता है। मुझे मालूम है उसको यहाँ स्टोन है, मुझे ये ट्रीटमेंट देना है, तो उसका जो भी बोलना है वो मुझे सुनना ही नहीं है। उसने आके बोला मैंने ये किया, मैंने वो दवाई खाई। लेकिन बिलीव मी, आप उसको सुनिए जरूर, जो भी कहना चाह रहे हैं ना पेशेंट उसको सुनिए जरूर, उससे उसको बहुत रिलीफ मिलता है। उसे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर ना मुझे एक रिस्पेक्ट दे रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो मेरा जो ट्रीटमेंट करेगा वो अच्छा करेगा। और दूसरा, कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए तो मैंने कभी पेशेंट से छुपाए नहीं है। बट ईमानदारी से मन से पेशेंट को बता दीजिए कि मेरे से ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है और अब इसका ये रेमेडी है। बिलीव मी, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ।
थैंक यू सो मच। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब गलती होते हैं तो शायद बहुत करेज चाहिए उस गलती को बताने के लिए, लेकिन ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेशेंट साइड एज वेल ए डॉक्टर साइड। मैं एक बात अभी कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी चीज हम अपनी तरफ से करेंगे तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कल जाके सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कल जाके सारा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, सारे पेशेंट आपसे अच्छे से बात करना शुरू करेंगे। शायद महीनों और सालों लग जाएंगे उस पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप होने में। तो दिल शिकस्त करने की कोई बात नहीं है, खराब होने में इतने साल लगे तो ठीक होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, बट वी हैव टू कीप पेशेंस विद आवर सेल्स, क्योंकि हमें काम अपने आप पर करना है और अपने आप को टाइम देना है। डॉक्टर किरण बाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आफ्टर टेकिंग दिस नॉलेज, दिस स्पिरिचुअल नॉलेज।
ये नॉलेज लेने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले तो मैंने ये न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग ही नॉलेज में आने के बाद की। 8-9 साल तक मैं एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस कर रही थी और फिर मुझे यही लगता था कि एट द एज ऑफ 40 इफ आई हैव टेकन अप ए न्यू स्टडी, आई स्टार्टेड विद DNB न्यूरोलॉजी एंड देन DM न्यूरोलॉजी, इसका पीछे कोई खास राज है। और मैंने देखा कि जो ये हमारी नॉलेज है इसमें इतनी साइंटिफिकली बेस्ड है कि एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा था मैंने पढ़ा और जाना कि सब कुछ हमारे थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। तो मैंने देखा कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिली। अपने आप को मैं बहुत एम्पावर्ड फील करती थी कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस कर सकती हूँ, टैकल कर सकती हूँ और अपने पेशेंट्स को भी वो जो मैंने सीखा है वो दे सकती हूँ।
थैंक यू सो मच।
ओम शांति।
थैंक यू। तो अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। बहुत सारा होमवर्क हमें मिल चुका है। इन अ नटशेल हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को जानने की जरूरत है, अपनी सोल की वैल्यूज को हमें इमर्ज करने की जरूरत है, तो हमारे डॉक्टर पेशेंट और बाकी सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच टू अवर पैनलिस्ट। आपके कुछ प्रश्न होंगे आपके मन में, हमारा एक और क्वेश्चन आंसर सेशन जो आपका शेड्यूल है उसमें हम ऑडियंस की तरफ से भी कुछ प्रश्नों को इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच।